ओम शांति। आज बाबा की ओर से हम सभी को एक बड़ा टाइटल याद दिलाते हैं, सुना तो होगा आप सबने कभी, आज उस पे चर्चा करेंगे। बात बहुत सुंदर और बहुत बड़ी भी है, लेकिन हम बाबा के बड़े बच्चों के लिए ये बड़ी बातें ही सुंदर बातें हैं। तुम सभी हो मास्टर सदगुरु, सबको नजर से निहाल करने वाले, सबकी गति सदगति करने वाले, मार्ग दिखाने वाले भी लेकिन करने वाले। तो आज चिंतन करेंगे, कौन स्वीकार करेगा आप में से कि हम मास्टर सदगुरु हैं? हाथ उठाएंगे, सोच के उठाना, सदगति करनी होगी, क्योंकि जिन्होंने अपनी सदगति की होगी, लंबा समय गति और सदगति की स्थिति में रहे हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति, मुक्ति की साइलेंस यही जीवन में आ गई हो, जीवन मुक्ति का संपूर्ण सुख यही हो, जीवन में रहते हुए भी हम बंधन मुक्त हों, तो ऐसी आत्माएं दूसरों के लिए मास्टर सदगुरु बन जाएंगी। देखिए, कुछ काम बाबा खुद करता है और कुछ काम वो बच्चों के द्वारा कराता है, इसका अर्थ ही नहीं वो खुद नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बातें सीक्रेट हैं, राज भरी हैं, जिनको समझना भी थोड़ा रिफाइन बुद्धि का काम है। राम का काम किसने पूरा किया? हनुमान ने। हनुमान की महिमा में ही है, तुमने राम के काज संवारे। वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन हिमालय पे जड़ी बूटी लेने जाना, सीता की खोज करना या और बहुत सारे काम, वो उसके ही थे। राम का नाम नल और नील लिख रहे थे पत्थरों पर और पत्थर तैर रहे थे। राम को भी ख्याल आया, रात को एक दिन मैं भी तो लिख के देखूं, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं। उसने भी लिखा, पत्थर जो सागर में डाला और डूब गया। कहा, ये क्या हो रहा है भाई, मेरे नाम से काम हो रहे हैं। तो संगम युग पर भी बाबा कुछ कार्य खुद करता है, कुछ कार्य करने की शक्ति हमें दे देता है, क्योंकि वो हमारे काम है, वो उसके नहीं है। स्वर्ग स्थापित करना है, राज्य स्थापित करना है, हमें करना है, क्योंकि राज्य भी हमें करना है, राज उसे नहीं करना है। जो स्थापना करेंगे वही पालना करेंगे, वही राज करेंगे। तो ये गति और सदगति देने का काम बाबा हम आत्माओं के द्वारा कराएगा। मार्ग दिखा रहा है, लाखों इतने लाखों को मिल गई है गति सदगति, मार्ग मिल गया है। अनेक धर्मों की आत्माएं, सोचो, जो शिव बाबा को शिव बाबा मानेंगी ही नहीं, उनकी भी सदगति तो उसे करनी है, या छोड़ देगा लेके नहीं जाएगा, लेके जाना है उसे सबको। और ऐसे नहीं वो ऐसे ही पकड़ के खींच के ले जाएगा, उससे पहले उन्हें पवित्र बनाना है। वो दिल से कहेंगे बाबा मेरा है, तब उन्हें मुक्ति का वर्षा मिलेगा। जब तक वो बाबा को मेरा नहीं कहते, उन्हें अधिकार नहीं मिल सकता। तो कुछ आत्माओं को वो निमित्त कर देगा और धर्मों के लिए ये कल्याणकारी काम करने के लिए। किन्हें करेगा नियुक्त? बोलो, किन्हें किन्हें? किन्हें? मास्टर सदगुरु। और बोलो किन्हें? नहीं और कुछ। दो बड़े धर्म संसार के, मुस्लिम और क्रिश्चियन, फरिश्तों में विश्वास करते हैं। भगवान तक तो उनकी पहुंच किसी की भी नहीं है, बस उसकी इबादत कर ली, प्रेयर कर ली, पहुंच नहीं है। उनका प्यार बहुत ज्यादा है फरिश्तों से। वहां चित्र भी वही है जैसे देवी देवताओं के चित्र हमारे यहाँ है। क्रिश्चियंस में फरिश्तों के चित्र, तो बाबा उनका कल्याण उन आत्माओं के द्वारा कराएगा जो फरिश्ते बन जाएंगे। आप में से किसी ने बाबा की वो मुरलियां सुनी हो, जब महाविनाश होगा तो एक दिन में नहीं होगा, वो लंबा समय लेगा, क्योंकि महाविनाशी धर्मराज पूरी भी होगी, हाहाकार होगा, दुखों के पहाड़ गिरेंगे तो ऊपर फरिश्ते दिखाई देंगे, इस देव देवियां दिखाई देंगे, और नीचे वाले लोग धैर्यवत हो जाएंगे, हमारे सहारा दाता आ गए हैं, हमारे मुक्ति दाता आ गए, वो हमें दिख रहे हैं, तो उनके दुख भी कम हो जाएंगे, और इन फरिश्तों के द्वारा जो संदेश उनको मिलेंगे सूक्ष्म में, वो उसे फॉलो करेंगे और उनकी गति हो जाएगी। अब हमें मास्टर सदगुरु बनना है। बाबा ने बोल दिया, जो बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हैं वो मास्टर सदगुरु बन जाएंगे। पीछे हम सुन चुके हैं, जो हर श्रीमत पर हाँ जी करते हैं बाबा भी जी हजूर तुरंत आ जाते हैं, हजूर हाजिर हो गया। श्रीमत पे हाँ जी गहरी बात है, तो हम कुछ श्रीमत निकालेंगे जो हमारे लिए अति कल्याणकारी हैं और जिन पर हमें चलना ही चाहिए और जिनके बारे में बहुत सारे ब्राह्मण अलबेले हैं, जानते हैं पर उनको फॉलो नहीं करते, दूसरों को देखकर। बाबा की मुरलियों में रोज कुछ सुंदर बातें आती है, वही श्रीमत है। श्रीमत माना जो मुरलियों में आ रही हैं। अब वो 10-12 हम निकालेंगे जिसको धारण करने से, अपनाने से हम मास्टर सदगुरु बन जाएंगे, दृष्टि से निहाल करेंगे। बहुत बड़ी चीज है। कौन दृष्टि से निहाल कर सकेंगे श्रीमत से? पहले जरा पहली जिनकी दृष्टि आत्मिक होगी, दूसरा बहने बोलेंगे अब, जिनकी दृष्टि में केवल एक समाया होगा, तीसरी बात जिनकी दृष्टि संपूर्ण पवित्र हो गई होगी, चौथी बात बताओ कुछ जो सबके लिए कल्याणकारी भावना रखते हैं, वही तो गति देंगे ना। जरा भी अशुभ भावना नहीं, जरा भी ईर्ष्या द्वेष या नफरत नहीं। बाबा बहुत अच्छी बात मुरलियों में कहते थे, बुद्धि में एक ही समाया हो, तुम्हारे नैनों में एक ही समाया हो और कोई नहीं समा सकता। बड़ी भारी साधना है ये हमारी, क्योंकि दैहिक दृष्टि 84 जन्मों की है, 5000 साल से दैहिक दृष्टि रही है, उसको समाप्त करके आत्मिक दृष्टि बनाना ये हमारी सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। श्रीमत 10 निकालेंगे, 5 वो निकाले जो हमें नहीं करना है और 5 वो निकालेंगे जो हमें करना है। 5-6 बोलो जो नहीं करना है, और बाबा सुनाते रहते हैं और सब करते हैं। बाबा ने जर्मी जंगमी ठीक बोला आपने, पर चिंतन जर्मी जंगमी एक ही कर दे से स सब चाहते हैं हमारा परचिंतन कोई न करे, और सभी दूसरों का परचिंतन करने से चूकते नहीं। जैसे ही मौका मिला, फर्स्ट क्लास अवसर मिल गया है, इसे गंवाना नहीं है। तो परचिंतन और झरमुई झरमुई तेरी मेरी अर्थात व्यर्थ बातें, इनसे तो मुक्त होना ही होगा। क्यों नहीं करना है? अब भाई उत्तर देंगे, क्यों नहीं करना है, मोटी बात है। टाइम वेस्ट होगा, मन बुद्धि की एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, जो बहुत बड़ी चीज है, जिसको हमें एकाग्र करके सर्व सिद्धियां प्राप्त करनी है। चमत्कारिक कार्य है, वो आत्माएं कर सकेंगी जिन्होंने एकाग्र कर लिया है स्वयं को। और जो बातों में हैं, वो तो एकाग्र होंगे ही नहीं, बल्कि उनका बुद्धि का भटकाव बढ़ता ही जाएगा। इससे जुड़ी हुई बिल्कुल ऐसी दूसरी धारणा जो नहीं करनी है भाइयों की ओर से, पीछे अब बोलो, सब जानते हैं, नहीं नहीं है बात, बोलो देवान। नहीं देवान छोड़ो, उसमें तो सारा कुछ आ गया, वो नहीं नहीं, जो नहीं करना है वो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जो टाइम वेस्ट न करता, खुले दिल से करते हैं। बहुत टाइम है, कैसे बिताएं सारा दिन, खुले मन से टाइम वेस्ट करते हैं। जबकि बाबा ने ये कहा, तुम्हारा एक एक मिनट, कुछ और, एक वर्ष के बराबर है। इतनी वैल्यू क्या हम भी समझते हैं समय की? पहली बात है समझना, क्या सोचते हैं बाबा तो ऐसे ही कहता रहता है। किसने बहुत अच्छी बात पूछी आज, बिना का कितना समय बचा भाई जी। मैंने कहा भाई मेरे पास तो बाबा का टेलीफोन आया नहीं, ईमेल नहीं आया है, अब मैं कैसे बताऊं, ये तो उसका काम है। नहीं, हमें बड़ा सेंटर बनाना है। अब हम सोचते हैं सेंटर बनाने में बुद्धि लगाएं या ज्ञान योग कर लें, क्या करें। थोड़ा टाइम बचा हो तो हम फिर सेंटर छोड़ दे, पुरुषार्थी करेंगे। मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्या लगता है? बाबा कहता है बहुत थोड़ा समय बचा है। मैंने कहा पता, भगवान के पास घड़ी नहीं है ऊपर, उसके लिए थोड़ा समय, जिसका एक मिनट एक वर्ष के बराबर है उसका थोड़ा समय कहीं लंबा निकल गया, फिर तुम मुझे कहोगी कि हमारा सेंटर नहीं बनने दिया, इसलिए अपना निर्णय खुद लो। क्या समय को हम महत्व दे रहे हैं? क्या हमें पता है कौन समय को महत्व दे सकता है? क्या हमें पता है कि हर पल हम अविनाशी महान कमाई कर सकते हैं, हर पल हम वाइब्रेशंस फैलाकर विश्व कल्याण का महान कार्य कर सकते हैं? क्या हमें ये पता है? हर पल का हमारा ऐश्वर्यपन का अभ्यास हमें मानता के शिखर पर पहुंचा सकता है। तीसरी धारणा जो नहीं करनी है, बैठाओ भाई ने, बैठो बैठ जाओ। तीसरी धारणा बहने पीछे वाली, खड़े होके बोल दो, जो नहीं करना है श्रीमत है। इतनी देर न लगाओ, सोच के रखो। चलो बहने नहीं सुना रही, कलश छलकाओ जरा, भाई बोलो, तब तक भाई बोलो, किसी को दुख नहीं देना है, इम्पोर्टेंट धारणा है बाबा की। इस पे भी हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सुख देंगे तो सुखी रहेंगे, दुख देने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। और विशेष रूप से अपने बोल से अपने व्यवहार से दुख नहीं देना है। आज हम रास्ते में चर्चा कर रहे थे अभी आते हुए कि बड़े बड़े ऑफिसर्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं कि आजकल टेंशन बहुत रहती है भाई, बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। माताएं भी कहती होंगी, बात थोड़ी वो खराब थी, कहा शिवानी बहन सुना रही थी डॉक्टरों को कि तुम जो पैसा कमाते हो ना वो थोड़ा गड़बड़ वाला होता है, इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, टेंशन रहती है। लोग कहते हैं ना पैसा होते हुए भी टेंशन बहुत है, पैसा टेंशन दे रहा है, सुख से जीवन जी सकते हैं पर भाग्य में नहीं है, गलत ढंग से पैसा कमाया जाता है दुख देकर। एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हो बुरा ना मानना भाई, अभी पेशेंट गरीब है, उसने कभी लाख रुपए देखे नहीं बेचारे के, अब उसको ऑपरेशन होना है, मृत्यु या ऑपरेशन, 5 लाख रुपए खर्च है, सबसे ले रहे डॉक्टर 5 लाख, उसके पास नहीं है, क्या होगा उसका? मृत्यु। ठीक है, डॉक्टर कहेगा भाई मेरी तो फीस है 5 लाख, उसका भी यहाँ कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो गरीबों को फ्री ऑपरेशन कर देते हैं, कोई बात नहीं तुम हमें दुआएं देकर जाना। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत सुख पाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी योजना चला दी ना, कौन सी? आयुष्मान भारत। समझते हैं ना इसका महत्व, कुछ लोगों को भी लाभ हो गया होगा, पर जब ये फुल फोर्स से चलेगी तो अमेरिका भी इसमें पीछे होगा, क्योंकि अमेरिका आदि देशों में सबके इलाज सरकार की ओर से ही होते हैं। लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि 5 लाख का हो, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की ओर से है। तो किसी को दुख नहीं देना है, ध्यान रखेंगे जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वही व्यवहार हम दूसरों से करें भी, एक सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत कर्म गति, जो व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वही व्यवहार कोई हमसे भी करेगा। एक बूढ़ी माता बहुत दुखी, सच्ची घटना सुना रहा हूँ, मेरे को आते ही पहली लाइन बोली मैं बहुत दुखी हूँ, चेहरा बता रहा था सुख देखा नहीं है। मैंने बहुत समझाया नहीं कुछ समझ में आया, जो उसे लाई थी उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी बहू इसको बहुत तंग कर रही है? कहा कर रही है। मैंने कहा तुम्हारी और इसकी आयु बराबर है, तुम बताओ कहीं इसने भी तो अपनी सास को तंग नहीं किया था? उन्होंने कहा किया तो था। गति यही है, उसने अपनी सास को तंग किया तो जब ये सास बनी इसकी बहू ने भी इसे वैसी तंग किया। अब जो दूसरे को तंग करता है उसकी वो सहन शक्ति खत्म हो जाती है कि कोई उसे तंग करे तो वो दुखी ना हो, इसलिए उसका हर बोल इसको तीर की तरह घायल करता है, दुखी करता है। हमें ये नहीं भूलना है, जो व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वही व्यवहार कोई हमसे भी करेगा। सब सीख लें सिद्धांत को। चौथी धारणा जो नहीं करनी है, फिर से बहनों की ओर से, क्रोध नहीं करना है। बात तो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसे भी नोट करो भाई, इसे भी नोट करो, क्योंकि ये क्रोध भी घर घर में शांति को जला रहा है, क्रोध की अग्नि जला रही है सुख शांति को घर घर में। अब ये कहने से काम तो नहीं चलेगा क्रोध न करो, क्या करेंगे? बाबा कहा करते थे अव्यक्त बाबा, कई बच्चे जब क्रोध करते हैं तो बाबा भी ऊपर से देखकर मुस्कुराता है, उनके बोल सुनकर रहम की दृष्टि से देखता है। तो हमारा प्यार भरा व्यवहार बाबा की सेवा करता है। हम ये भी याद रखें, जिन परिवारों में माताएं या भाई, चाहे वो अकेले ज्ञान में चलते हैं, अगर उनकी स्थिति बहुत अच्छी है तो सारा परिवार उनका सम्मान करता है और ज्ञान में आता है। और गुस्सा करती है माता जी और सबको कहती है सेंटर चलो, पवित्र भोजन खाओ, नहीं बनने दूंगी लहसुन प्याज का घर में, तो लोग उसे नाराज भी होते हैं, लड़ाई भी करते हैं, स्थिति। इसलिए क्रोध हमारा क्या है, मित्र या शत्रु, इसको शत्रु मान लें। गीता में ये शब्द बहुत अच्छे, लोग भूल गए गीता की सब बातों को पिछले 50 सालों में, तो खास करके भूल गए। मनुष्यात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही खुद शत्रु है। काम क्रोध लोभ ये मनुष्य के महावैरी हैं। ये बहुत सुंदर शब्द हैं। आजकल जिस चीज को लोग भूल गए वो गीता के 3रे अध्याय में ही है। अर्जुन पूछता है भगवान न चाहते भी मनुष्य पाप क्यों करता है, इस पाप का मूल क्या है। उत्तर है बहुत सुंदर, काम ही पापों का मूल है। आज देख लो काम वासना के कारण अनेक समस्याएं समाज में हैं, अनेक। हम क्लास में तो उनका वर्णन नहीं कर सकते पर हमारे पास आती हैं तो पता चलता है कि काम वासना ने संसार को दुर्गति में डाल दिया है। कोर्ट केस भरे हुए हैं, घर घर में अशांति है। क्रोध से मुक्ति, 5वीं धारणा जो नहीं करना है, हैं? नहीं, ये बड़ी चीज है, थोड़ी प्रैक्टिकल हैं? ठहरो, बच्चे बता रहे हैं?
सोने से पूरा दिन बिगड़ेगा।
सोने से तो सोए नहीं, नहीं तुम ठीक बोल रहे हो, और अच्छा बोलो, सवेरे सोने से सारा दिन बिगड़ेगा। भाई ये छोटे बच्चे का है अमृत वेले, अब तुम तो सो जाता होगा, बच्चे तो सोते हैं, फिर दिन बिगड़ता है या सुधरता है। भाई बच्चों को तो नींद प्रिय है। माताओं को मैं कहना चाहूंगा, कई माताएं अपने छोटे बच्चों को 4 बजे के बाद सोने नहीं देती, ये गलती ना करें माताएं। बच्चों को नींद ज्यादा चाहती है, अगर आप उनकी नींद कंट्रोल कराएंगी तो ब्रेन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। इसलिए ये बच्चों को नहीं, अगर वो उठ के आप कहेंगे योग करो, एक लगा भी देंगी, चाय भी पिलाएंगी, तो ये योग कोई योग थोड़ा ही है, और वो ज्ञान से विपरीत होंगे, वो ज्ञान के सहयोगी नहीं होंगे, कहेंगे ऐसा ज्ञान बेकार, सोने भी नहीं देता। चलो 5वीं बात जो नहीं करनी है, हाँ नहीं, ये अलग बात है। और प्रैक्टिकल बातें बताओ भाई लोग, ये बात प्रैक्टिकल, हमें यज्ञ का कुछ भी नुकसान नहीं करना, यज्ञ में विघ्न नहीं डालने हैं। थोड़ी बड़ी धारणा हुई ना, अच्छी प्रैक्टिकल। अब 5 बातें जो हमें करनी है, एक तो इस बच्चे ने बता दिया अमृत वेला हमारा बहुत अच्छा हो, केवल उठना ही काफी नहीं पर हम उसका आनंद लें, इसलिए उसकी थोड़ी प्लानिंग कर लें। कुछ सुंदर संकल्प रात को रख कर ही सोए कि सवेरे उठकर मुझे बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करना है, सवेरे उठकर मुझे बाबा से दृष्टि लेनी है, बाबा ने कह दिया है मैं सवेरे अपने प्यारे बच्चों को वरदान देता हूँ, मुझे उससे वरदान लेना है। कुछ निश्चित करें, सवेरे मुझे संसार को सकास देनी है, सवेरे मुझे बाबा को शुक्रिया करनी है, सवेरे मुझे बाबा के पास कुछ देर बैठना है परम धाम में, सवेरे मुझे अभ्यास करना है। अभी मुरली में आ गया है, मैं पवित्रता का फरिश्ता इस देह में इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ, संसार को पवित्र बनाने के लिए। अलग अलग बातें, 2-4 बातें इस सदा नहीं चलेंगी, इन्हें चेंज करते रहना होगा, और वो चेंज करने के संकल्प हमें मुरलियों से मिलेंगे। इसलिए दूसरी धारणा हमारी है मुरली। मुरली में रस, मुरली का महत्व समझते हुए कि मुरली हमारे तीसरे नेत्र को खोलती है रोज, माया बंद कर देती है थोड़ा बहुत, रोज सवेरे फिर खोलता है बाबा, हमें ज्ञान का भंडार मिलता है, समस्याओं का समाधान मिलता है, बाबा के प्यार की महसूसता मुरली से ही तो होती है कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करता है। अगर आप बाबा की मुरली टेप से सुनो, साकार बाबा की, हालांकि उस टाइम साधन नहीं थे यज्ञ में, तो जैसे बाबा यहाँ बोलेगा तो नीचे दूर वो माइक रखा रहेगा, कभी कभी साइड में रहता था, ये स्टैंड नहीं होते थे, एक मोटा सा बड़ा सा हाथ जैसा माइक होता था वो नीचे रखा जाता, तो रिफाइन नहीं था तो कैच नहीं करते थे, लेकिन जो क्लियर मुरली है उनमें आप सुने अब तो लगेगा बाबा कितना प्यार से बात करता है बच्चों से, भाषण नहीं कर रहा है, डांट नहीं रहा है, जैसे मेरे बच्चे, उन्हें मुझे ये सिखाना है, उन्हें मुझे इस चीज से बचाना है, उनका मुझे भाग्य बनाना है, बहुत प्यार वो उस मुरली से महसूस होता है। तो मुरली का संपूर्ण महत्व है या नहीं, या भाई व्हाट्सएप पे देख लेंगे, फोन पे आता है, ठीक है ना, करने से ये भी अच्छा, मुरली पीस ऑफ माइंड पे भी आ जाती है वो भी अच्छा, मैं भी सुन लेता हूँ, 6 बजे से आती है कुछ काम करते हुए सवेरे के, सुनते हैं तो बहुत गहरी बातें मिलती हैं। मुरली तो नई हो या पुरानी, 10 साल की हो या 20 साल की, वो तो अमृत है। तो ये सब साधन भी बाबा ने दिए हैं, इनका भी उपयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पीस ऑफ माइंड से नहीं सुने आप, मोबाइल से नहीं देखें सुने आप, करें सब अच्छे से अच्छा, ज्ञान का भंडार हमारी बुद्धि में समाता जाए। लेकिन क्लास में बैठकर जब हम मुरली सुनते हैं, उससे मुरली का सुख भी साथ साथ मिलता है। मुरली में हमें लक्ष्य रख लेना है मुरली सुनते हुए कि हमें बाबा से मिलन का अनुभव भी करना है, कि बाबा डायरेक्टली हम आत्माओं से बात कर रहा है, तो ये बहुत गुड फीलिंग होगी। और तीसरी धारणा जो हमें करनी है, भोग लगाना और भोजन। बाबा ने चैलेंज किया था पीछे, माताएं इस चैलेंज को स्वीकार कर लें, योग युक्त भोजन बनाकर दिखाओ। हैं? करेंगे तो कुछ तो करेंगे, चैलेंज स्वीकार करेंगे तो कुछ तो होगा ना, मेहनत अच्छी, अच्छे अभ्यास होंगे। योग युक्त खाना, बाबा को भोग लगाना, इसका भी बड़ा महत्व है। भोग से भी बल मिलता है, भोगनाएं मिटती हैं, बाबा की दृष्टि हमारी ओर आती है, खुश होता है जैसे भगवान। उसको भोजन तो खाना ही नहीं होता है, लेकिन उसको भावनाएं हमारी, हमारा प्यार पहुंचता है, उसका रिटर्न बहुत बड़ा होता है। और इम्पोर्टेंट धारणाएं जो करनी है, श्रीमत और मुख से बोल कैसे निकले, इम्पोर्टेंट धारणा। बोलो नहीं, बाबा के शब्द बोल दो, मुख से तुम्हारे रतन निकले, पत्थर नहीं हीरे तुल्य बोल, अमृत समान बोल, क्योंकि हमारे बोल का बड़ा महत्व है। वैसे भी अगर हम गहराई से देखें, जैसे बाबा की मुरली में एक बात पीछे भी आई जो बहुत ज्यादा याद करते हैं, वो स्थापना के कार्य में बहुत सहयोगी हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस फैलते हैं याद से। बोल, हमारी बोल की भी तरंगे फैलती हैं, इनको तरंगे कहते हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं ये, जैसे रेडियो पर आप स्केच करते हैं ना, टीवी पे स्केच करते हैं, प्रोग्राम चल रहा दिल्ली में, कैच कर रहे हम, यहाँ तरंगे आ रही हैं। तो जितने अच्छे अच्छे बोल हमारे होंगे उतनी अच्छी तरंगे हम फैला रहे हैं ना वायुमंडल में। ये भी वायुमंडल को बदलने का तरीका हो गया। और जितने अच्छे हमारे बोल होंगे उतना ही अच्छा हमारा परिवार, हमारा संगठन होगा या नहीं। परिवार में एक व्यक्ति रफ बोलता हो कैसा रहता है, सूख जाता है जैसे सब कुछ, प्यार भरा माहौल नहीं रहता, लोग एक दूसरे से फिर अच्छी बात नहीं करते। अब एक व्यक्ति बुरा बोलेगा तो 5-7 बार सुनने के बाद सुनने वाले भी तो कुछ करेंगे या नहीं, फिर वो भी बोलेंगे और इससे वाइब्रेशंस भारी हो जाते हैं परिवारों के। इसलिए माताओं का तो विशेष कर्तव्य है, कोई ऐसा वैसा बोले उसे स्वीट बनाओ। माताओं में शक्ति है या नहीं, बोलो है या नहीं, या खुद ही ऐसा बोल देते हैं, खुद भी नहीं बोलना है और कोई और बोले तो प्यार से उनको हैंडल करना है। बोल और चले श्रीमत, ये भी बहुत अच्छी संगठन की बात है। सम्मान देना है, मिल तो आप ही जाएगा, लेने की बात नहीं, सम्मान देना है। स्वानधारी बनकर रहना है, अर्थात सारा दिन स्मृति स्वरूप होकर रहना है। अब ये अच्छी अच्छी जो साधनाओं की श्रीमत है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है, एसरीपन का अभ्यास करना, जैसे आज की मुरली में था, सबको याद दिलाओ ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वापिस घर जाना है, तुमने चक्र अनेक बार लगाया है, अब चलना है घर। ये सब साधनाओं की श्रीमत है। तो जो हमारी साधना करने की, जो प्रैक्टिस करने की श्रीमत है, उनको हम अलग देखें, एक तरफ से लिखें, उन्हें नोट करें। स्वमान का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वदर्शन चक्रधारी होना, अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, परम धाम में बाबा से बातें करना, ज्ञान का चिंतन करना, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और भी कोई इम्पोर्टेंट श्रीमत सुनाएंगे? और बोलो। हाँ जी का ये भी बहुत सुंदर धारणा है। हाँ जी हम करते हैं तो सबके स्नेही बनते हैं और फिर बाबा भी हाँ जी करेगा। पवित्रता के बारे में भी श्रीमत है ना, उसको भी ध्यान देना है। बाकी बन गए, पवित्रता की राह पर चल पड़े, अब यही हमारा जीवन है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है, जो व्यक्त मुरली में था पिछली बार, कि श्रीमत नेचुरल रूप से जीवन में हो। हमें ये न लगे कि ये करना पड़ता है, जैसे अच्छे बोल बोलना बड़े नेचुरल हैं हमारे, जैसे सवेरे उठना बड़ा नेचुरल हो जाए, मुरली में जाना नेचुरल लाइफ, सेवा करना नेचुरल, ऐसे ये श्रीमत हमारे जीवन में नेचुरल हो जाए, ऐसा हम सभी को बहुत ध्यान देना है। फिर से चले वहीं, तो हमें मास्टर सद्गुरु बनना है, दृष्टि देकर सबको निहाल करना होगा। निहाल का अर्थ क्या है? अभी अभी कोई आपके पास आ गया, उसको आपको दृष्टि देकर निहाल करना। गति सदगति तो बाद की बात। एक दुखी व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसे दृष्टि दी और उसका दुख हल्का होके समाप्त हो गया, ये निहाल करना। एक इम्प्योर वृत्ति से व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसे दृष्टि दी, उसकी वृत्ति शुद्ध हो गई, ये हुआ उसको निहाल करना। और एक चैलेंज बाबा ने पीछे किया मुरली में, अभी नजदीक में, ऐसा करो कि किसी को भी दृष्टि दो और वो शरीर भूल जाए, अशरीरी हो जाए, डीप साइलेंस हो जाए, ये है नजर से निहाल करना। किसका योग नहीं लग रहा है, ये बड़ी बात होगी। मन बहुत भटकता है तो देर सामने बैठा या दृष्टि दी, मन एकाग्र हो गया, ये हुआ वो आत्मा निहाल हो गई। वो फिर बड़ी बातें होंगी, उनकी कामनाएं पूर्ण कर दी, उनके विघ्न नष्ट कर दिए, उनके दुख जीवन से दुख सदा के लिए मिटा दिया। ये प्रैक्टिकल यहाँ होगा, मास्टर सदगुरु का पाठ प्रैक्टिकल यहाँ चलेगा। फाइनल गति सदगति से पहले इस धरती पर ही महान आत्माओं का ये रोल चलना है। कुछ आत्माएं हम में से ऐसी हो जाएंगी जो दृष्टि से आत्माओं को निहाल करेंगी। अब सोच लें आप, जो बहुत अच्छे योगी होंगे, जिनकी दृष्टि भटकी नहीं है, दृष्टि को जिन्होंने भटकाया नहीं है, वृत्तियों को इच्छाओं के पीछे नहीं भटकाया है। मैं मामा की वो बात सुनाया करता हूँ कभी कभी क्लास में, मुझे बहुत प्रिय लगी। और जब मैं भी जाता हूँ कार में शहरों में, मुझे भी याद आता है, रमेश भाई मामा को घुमाने ले जाते थे कार में, तो पूछा एक बार, मामा कितना सुंदर होर्डिंग था सामने, आपने देखा? बड़े बड़े लगे रहते ना बोर्ड, उसको होर्डिंग कहते, उनपे एडवर्टाइजमेंट लिखा रहता है। तो मामा ने क्या कहा, ऊपर देखती हूँ तो वो ऊपर वाला, नीचे देखती हूँ तो आत्माएं। ये है संसार की जो सबसे नंबर वन योगिनी है उनकी ही। तो न दृष्टि भटकी, न वृत्ति इच्छाओं के पीछे भटकी, तभी तो संसार में उनका पूजन है ना, तभी तो वो कामधेनु बन गई, कोई दुर्गा के रूप में, कोई अम्बा के रूप में, कोई महाकाली के रूप में। उनसे क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, भले ही पीछे से कराता शिव बाबा है, पर जिनको माध्यम बनाया उन्होंने कितनी बड़ी साधनाएं की हैं। तो हमें नजर से निहाल करना है सबको, तो अपनी नजर को अब आत्मा पर स्थिर करें, आत्मिक दृष्टि बनाएं और नजरों में बाबा को समाएं। और हमारी नजरों से, हमारी आंखों से निकलते हैं हमारे वाइब्रेशंस, जो हम अंदर हैं वो हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट होता है बाहर, बाहर निकलता है वो। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो दूसरों को देखेगा, दुखों के वाइब्रेशंस जाएंगे दूसरों को। कोई व्यक्ति बहुत पवित्र है, दूसरों को देखेगा, पवित्रता के संस्कार जागृत होंगे उनके अंदर के भी। तो हमें मास्टर सदगुरु बनना है। श्रीमत पसंद आई सब? समय को महत्व देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। कई लोग तो घंटों बैठे बात करते हैं, बाबा भी सुनाया करते थे साकार में जब थे ना बाबा, तो दो कोई बात कर रहे, बाबा ने देख लिया उनको, छोटा ही था ना मधुबन, अब भी बड़ा है ये, छोटा था, तो भाई ये बहुत देर से दोनों बात कर रही हैं। फिर दीदी को भेज जाए, बात कर रही हैं, देख क्या वो अभी भी कर रही हैं क्या? हाँ कर रही हैं। फिर और देर हो गई, फिर उन्हें बुलाया, बच्ची क्या बात कर रही, बहुत देर हो गई, ऐसे ही बात कर रहे थे। तो बाबा इस पे बड़ी चुटकी लेते थे कि देखो ऐसे ही बात करने में घंटों लगा दिया, जिन बातों का मीनिंग नहीं है। तो हम समय की समीपता को पहचाने, समय तरण लेगा अचानक, बाबा के शब्द याद आ गए होंगे आपको, अचानक। केवल ये मृत्यु की बात नहीं, ये केवल प्राकृतिक प्रकोप की बात नहीं, वो तो अचानक ही होते हैं, धरती हिलती है कोई बताती थोड़ा ही है पहले से। ये जो भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिक भी हैं, उनको पता नहीं चलता, जब एक बड़ा भूकंप हो जाता उसके बाद भविष्यवाणी करते हैं कि दो और होंगे, पांच और होंगे, उससे पहले किसी को पता नहीं चलता। तो सब कुछ अचानक होता है ना, एक्सीडेंट भी अचानक होते हैं, कईयों की मृत्यु भी अचानक होती है, लेकिन समय का खेल भी अब अचानक टर्न लेगा। कई लोग सोचते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं, आपसे पूछते होंगे, क्या होगा आगे, अव्यक्त बाबा भी नहीं आ रहे हैं, क्या होगा, यह कैसे चलेगा। ये प्रश्न तब भी बहुत उठाता जब बाबा अव्यक्त हुए थे 69 में, परेशान हो गए थे लोग दो दिन, तीसरे दिन जब बाबा आए संपूर्ण शांति। बाबा ने दो चार लाइनें बोल के यज्ञ आगे कैसे चलेगा क्लियर कर दिया, सबके चित्त शांत हो गए। तो ये यज्ञ तो तब तक चलेगा जब तक, बोलो अच्छी अच्छी बात, ठीक बोल रहे, जब तक स्थापना न हो जाए, जब तक सारी दुनिया की अति इसमें न पड़ जाए। कितना भारी शब्द है, सोच के देखो, सामग्री नहीं डालनी है, सारी दुनिया की आहुति डालनी है। तो ये तो चलेगा, ये कैसे चलेगा, इसको समझने वाले नहीं समझते तो वो उनकी अपनी गलती है। यज्ञ को कुछ होने वाला नहीं है, बाबा भी यही है, वो भी परम धाम नहीं जा रहा है, वो तब तक नहीं जाएगा, वही रोज जाता है पर फाइनली नहीं जाएगा जब तक स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। तब तीसरा पाठ चलेगा, बाबा तो रहेगा ही साथ में, कुछ ऊपर से काम करेगा, कुछ हमारे साथ रह के कार्य करेगा, पर अब उन महानात्माओं के द्वारा कार्य आगे बढ़ेगा, जो श्रेष्ठ योगी बने, जो बहुत पवित्र बने, जिन्होंने बहुत बड़ा डेडिकेशन समर्पण की है बाबा के लिए। ऐसे नहीं वो नहीं है, कई लोग सोचते हो तो दिखते ही नहीं कहीं, ये भी एक प्रश्न होता है, दिखते हैं पर किने, बताओ सीधा प्रश्न है सुशील, जिनकी तीसरी आंख देखने योग्य बनी है। क्योंकि लोग बड़ों को देखते हैं जो स्टेज पे होते हैं, लेकिन स्टेज पे थोड़ा ही सब आएंगे, वो स्टेज पे दो चार पांच को बैठाएंगे, लेकिन वो सब महान आत्माएं तो बाबा के यज्ञ में, यहाँ मंत्रों में और घरों में ये नहीं के समर्पित ही है ना, तो वो सब आगे का कार्य संभालेंगे और तेजी से चलेगा। ओम शांति। अब मास्टर सदगुरु बनकर बैठेंगे और दृष्टि दे दें सारे संसार को यहीं से, सदगुरु सिर के ऊपर छत्र छाया।